है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी है और वह चाहता है कि उसके लोग मन फिराकर उसकी ओर आ जाएं। तब वह कहता है कि वह उनके पापों को क्षमा करेगा, उनके खेतों को फिर से आशीषित करेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। पिताजी, हमारी प्रार्थना है हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। योएल नबी की पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके द्वारा से आप हमें सिखाएं कि हम अंतिम दिनों के बारे में अधिक जानने पाएं। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, या किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें। जो परिवार में संतान नहीं है, संतान की इच्छा रखते हैं, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उनके विश्वास को दृढ़ करें। हमारी प्रार्थना है उन जवान भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, आप उनके जीवन साथी का प्रबंध करें, उनके जीवन के लिए एक योग्य साथी दें। जो नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु आप उनकी भी सहायता करें। इस घड़ी हर एक से आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों एक विशेष युग में हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं योएल 2 उसके 20 पद। लिखा है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। कहता है, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। यह टिड्डियों के विषय में नहीं, उत्तर दिशा की सेना के विषय में कहा गया है। यह भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई थी जब अश्शूरों की सेना ने इसराइल को बंदी बनाया था और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यहूदा की रक्षा में उन्हें खदेड़ दिया था। यहूदा की बंधुआई 100 वर्ष बाद की घटना है और उस समय अश्शूरों की सेना नहीं रही थी, वह बेबीलोन की सेना थी। मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी का दूरस्थ परिप्रेक्ष्य अभी एक भावी घटना है जिसका विस्तृत वर्णन यहेजकेल नबी के पुस्तक 38 और 39 अध्याय में दिया गया है। महाक्लेश के समय उत्तर दिशा से रूस आएगा और परमेश्वर इसराइल की रक्षा करेगा। यह विवरण भावी हर्मगिदोन के युद्ध का उचित संकेत है। उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब की ताल की ओर, उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। मेरे प्रियो, जहां हर्मगिदोन का युद्ध होगा, उस एस्ट्रिलोन घाटी के एक ओर गलील सागर है और दूसरी ओर भूमध्य सागर है। जैसा हमने यहेजकेल नबी की पुस्तक में देखा था, परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। जी हां, वह उत्तर दिशा से आने वाली एक सेना को नष्ट कर देगा। कि उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पापी को दंड देने में उतना ही महिमान्वित होता है जितना वह पापी का उद्धार करने में होता है। हमारे लिए इसे स्वीकार करना कठिन है। परमेश्वर पवित्र है, जी हाँ, और वह पवित्र एवं धर्मी परमेश्वर दंड तो देगा ही। प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने यही कहा है। परमेश्वर के वचन में उसके दंड के बारे में बहुत कुछ लिखा है, परंतु सच तो यह है कि उसे दंड देना अच्छा नहीं लगता है। हम देख चुके हैं कि वह दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करता है। दंड देना परमेश्वर का विचित्र कार्य है। यही कारण है कि वह धीरज धरता है और हमसे आग्रह करता है कि उसके पास आ जाएं। परंतु यदि मनुष्य इनकार करे, उसके पास ना आए, तो फिर उसे अपनी पवित्रता और धार्मिकता के कारण उन्हें दंड देने पर विवश होना पड़ता है। यह उसके कारण नहीं, परंतु हमारे कारण उसे दंड देना पड़ता है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की संतान के लिए भी है। हम अपराध करके अपने आप को नहीं जांचते तो फिर परमेश्वर के लिए हमारी ताड़ना करना आवश्यक हो जाता है कि हम उसके पास आ जाएं। मैं आपसे सच कहता हूं कि परमेश्वर ने मेरी भी ताड़ना की है। मैं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से लिपटा रहना चाहता हूं, उसके निकटता में बने रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से ताड़ना पाना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकटता में बने रहें। योएल नबी की पुस्तक 2:21 में लिखा है, हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने इस पृथ्वी पर आएगा। आज इसराइल श्रापित है, उन्हें पानी की कमी है। वह देश अदन की वाटिका के निकट कहीं नहीं है। कोई भी जो यरूशलेम से यरूहो की ओर यात्रा करे, वह यही कहेगा कि इसराइल एक रेगिस्तान है। जी हाँ, आप देखेंगे कि यहां कलिसिया का कोई भी संकेत नहीं है। कलिसिया का संकेत न तो जैतून के पर्वत पर यीशु मसीह की बातों में है और न ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 के बाद कहीं है। विश्वासी पृथ्वी से उठा लिए गए हैं और पृथ्वी पर अब कलिसिया नहीं है। स्वर्गवास के समय विश्वासियों को कलिसिया अर्थात बुलाए हुए नहीं, मसीह की दुल्हन कहा जाएगा। योएल नबी की पुस्तक 2:22 में लिखा हुआ है, हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। यह दिन अभी नहीं आया है। योएल 2:23 में लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। वह कहता है, हे सियोन के लोगों, ये लोग हैं दक्षिणी राज्य यहूदा के निवासी, क्योंकि सियोन वही है। हम गाते हैं, सियोन देश मेरा देश, परंतु हमारा सियोन या हमारा सियोन देश यहां नहीं है। मेरे प्रियो, यहां वह वर्षा ही की चर्चा कर रहा है, परंतु पद 28 में वह पवित्र आत्मा के आगमन को वर्षा की उपमा दे रहा है। आरंभिक वर्षा वहां अक्टूबर महीने में और अंतिम वर्षा अप्रैल महीने में आती थी। धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भ भी वर्षा के इन महीनों का उल्लेख करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 26:3-4, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11:14-17, पहले राजाओं की पुस्तक 8:35-36, यर्मिया की पुस्तक 3:3, होशे 6:3। मेरे प्रियो, इसराइल में भ्रमण के समय लोगों ने जो सुना था वह यह है कि अंतिम वर्षा होने लगी है, और उन्होंने देखा कि अप्रैल में वहां कुछ तो वर्षा हुई थी, परंतु मेरे विचार में वे लोग उसे वहां का वर्षा नहीं कहेंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। पूर्व काल में वहां वास्तव में अच्छी वर्षा होती थी। उस देश के सूखे पर्वत हरे भरे थे। दुश्मन से उस देश को पूर्ण रूपेण उजाड़ कर दिया है, क्योंकि दुश्मन वहां आकर ठहरने लगे। वे वृक्षारोपण तो कर रहे हैं, परंतु पेड़ों को बढ़ाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अंतिम वर्षा बहुत कम होती है। योएल इसी वर्षा की चर्चा कर रहा है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। योएल की पुस्तक 2:24-25 में हम पढ़ते हैं, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। कहता है हानि तुमको भर दूंगा। इस उक्ति को अनेक बार प्रचार में शब्दों से संवारा गया है। इसे निश्चय ही एक उपमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक सिद्धांत निहित है। मेरे प्रियो, यही विचार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:5 में भी पाया जाता है। परमेश्वर कहता है कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। इस अध्याय में वह नए यरूशलेम के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले पापी वहां होंगे। वह कहता है कि वह एक अति उत्तम स्थान होगा और परमेश्वर हमारी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, पोंछ देगा। वह कैसा महान परिवर्तन होगा। इस संसार में बहुत आंसू टपकते हैं, और मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। मेरे मित्रों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। मैं अपने मन की इच्छा का उपदेश कभी नहीं सुना पाया हूं। मैं जिस उमंग और बल से प्रचार करना चाहता हूं उससे मैं कभी प्रचार नहीं कर पाया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी का एक बहुत अच्छा पति होता। जब मैं रोगी होता हूं तब हम पुराने दिनों को याद करने पाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने अपनी पत्नी से कहा, काश मैं बहुत कुछ बदल पाता और अधिक अच्छे दिन ला पाता। मैं तो पिता भी वैसा नहीं बन सका, नहीं सक पाता हूं जैसा चाहता था। मैं जैसा मनुष्य होना चाहता था मैं कभी नहीं हो पाया। यही कारण है कि मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21:5 बहुत अच्छा लगता है। कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे कहेगा कि मैंने पृथ्वी पर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि मैं खिन्न था, मैं सीमित था, मेरा स्वभाव पापी था। परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा और तू अब जो चाहेगा उसे कर पाएगा। मेरे मित्रों, हमारे लिए स्वर्ग बहुत ही सुंदर स्वर्ग होगा। हम वह सब कुछ कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, और वास्तविक मनुष्य बन जाएंगे। हम पाप की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, वातावरण और अनुवांशिक अवरोधों से मुक्त हो जाएंगे। इन सब बातों से बचकर प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में रहना कैसा महिमामय समय होगा। वह सब कुछ नया कर देगा। वह टिड्डियों द्वारा की गई हानि को भर देगा। योएल नबी की पुस्तक 2:26-27 में हम आगे पढ़ते हैं, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। यह तब होगा जब वह इसराइल के मध्य वास करेगा, अर्थात जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर लेगा। उस समय परमेश्वर द्वारा इसराइल को दी गई सब प्रतिज्ञाएं जो सांसारिक आशीषों से संबंधित हैं पूरी होंगी। पुराने नियम में आशीषें सांसारिक सुख सुविधाओं की होती थी। परमेश्वर ने उस देश को आशीषें देने की प्रतिज्ञा की कि उन्हें विपुल फसल प्राप्त हो और उनके मवेशी पशु फूले फलें। वहां आत्मिक आशीषें मुख्य स्थान रखती प्रतीत नहीं होती हैं। दूसरी ओर कलीसिया को जो प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, उनमें केवल आत्मिक आशीषें हैं। हमें प्रभु यीशु में सब स्वर्गिक आशीषें प्राप्त हैं। मेरे प्रियो, यद्यपि इसराइल को भौतिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी गई थी, यहां हम उनकी आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा भी देखते हैं। यह धर्म शास्त्र का एक अत्यधिक विवादित अंश है। तो आइए हम देखें पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। इस अंश के अध्ययन में हमें स्मरण रखना है कि यह योएल की भविष्यवाणी है जिसका आरंभ टिड्डियों के आक्रमण से होता है, जिसकी तुलना वह भावी प्रभु के दिन से करता है। हमने देखा है कि प्रभु का दिन महाक्लेश से आरंभ होता है, जिसके बाद प्रभु यीशु आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। पद 27 में हमने देखा है कि उस समय प्रभु इसराइल में अर्थात इसराइल के मध्य वास करेगा। अब हम देखेंगे कि वह वहां क्या करेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 से 32 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, इस अंश के बारे में हम अनेक अच्छी बातें कह सकते हैं। पद 28 से 32 इब्रानी भाषा की बाइबल में अध्याय 3 में है, और अध्याय 3 उसमें अध्याय 4 है। इस पर कोई संदेह नहीं करेगा कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग अध्याय में होना है। जी हाँ, इस भविष्यवाणी को समझने के लिए इन पदों में दिए गए समय को समझना आवश्यक है। उन बातों के बाद योएल प्रभु के दिन की चर्चा करता है। वह बताता है कि उस समय क्या होगा। उसने इस तथ्य को तो उजागर कर दिया कि प्रभु का दिन महाक्लेश के अंधकार से आरंभ होगा। यह नाम हमारे प्रभु यीशु ने ही दिया है। होशे की पुस्तक के अध्ययन में हमने समय के क्रम के महत्व पर ध्यान दिया है। होशे नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। जी हाँ, हमने अंतिम दिनों को महाक्लेश का समय कहा था। वह समय पृथ्वी पर प्रभु के राज्य के स्थापना का समय होगा। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि योएल एक विशेष समय के संबंध में चर्चा कर रहा है और यह भविष्यवाणी प्रभु के दिन पूरी होगी जो महाक्लेश की रात का समय होगा। तब परमेश्वर सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा। मेरे प्रियो, यही वो समय है जब परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर विश्वास करें और उसमें आगे बढ़ें। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यह अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ साथ हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और इस अध्ययन के द्वारा आप और भी परमेश्वर के निकटता में आए हैं। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में लाएं, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी आत्मा हम पर उंडेलेगा। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी अवसर है कि हम अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं और उस आत्मा का, उन आशीषों का अनुभव अपने जीवन में लें। मैं नहीं जानता कि इस समय आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उन महाक्लेश के दिनों में ना पाए जाएं। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको महाक्लेश में से होकर के जाना है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उससे बचाए जाएंगे, अर्थात महाक्लेश के पहले ही आप प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस अध्ययन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।